الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے تجارتی معاشی اور مالی معاملات کے حوالے سے شرعی رہنمائی کا. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفی رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس رمضان المبارک میں فطرہ نکالا جاتا ہے, زکوٰۃ خیرات کا ذہن ہوتا ہے. فطرے کا نکالنا جو ہے اس کا وقت کب تک ہے, کب پہلے نکال سکتے ہیں, بعد میں نکال سکتے ہیں, کیا ہے اس کی کچھ تفصیل ہوگی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فطرے کے وجوب کا جو وقت ہے وہ تو عید کے دن کا ہے,
ٹھیک.
اس سے پہلے اگر کوئی نکالتا ہے تو فطرہ ادا ہو جائے گا, اور بہت سارے لوگ رمضان میں ہی نکال دیتے ہیں. تو فطرے کی تو ہو گئی بات اتنی جو میں نے عرض کی.
جی
رمضان کے آنے سے پہلے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق کام کاج سے ہے, یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی مشقت والا کام رمضان میں نہ کیا جائے کہ جس سے روزہ رکھنے میں آزمائش آئے اور بندہ ترجیح دے کہ مجھے تو کام کرنا ہے, مجھے تو بھاری کام کرنا ہوتا, میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں. تو رمضان میں وہ ذہن بنے گا نا تو آپ پلاننگ کریں گے اپنی. آپ اپنی پلاننگ پہ کیا اپنی بات پہ کھڑے رہیں تو پلاننگ کیسے ہوگی پھر. یعنی جب آپ فوکس کریں گے کہ روزہ اہم ہے اور روزے کو ترجیح دینی ہے اور روزے کے لیے پلاننگ کرنی ہے, کہ آپ کس طرح جو ہے کام کم کر سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جیسے گورنمنٹ ملازمین ہیں, گورنمنٹ ملازمین دفاتر کے ملازمین ان کے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہیں, مطلب صبح جلدی جاتے ہیں, 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, پھر آ کے سو جاتے ہیں یا گھر کے کام کاج کر لیتے ہیں تو ٹائم کم ہو گیا. کچھ لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کام کے لیے دستیاب ہوتے ہیں, یا اور نوعیت کا کام ہوتا ہے تو ان کو بھی رمضان کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. تھوڑی سی گرمی ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے حساب سے یہ ہے کہ رمضان ظاہر بات ہے اپریل شروع ہو جائے گا, اپریل ایک گرم مہینہ ہے تو گرمی تو رہے گی, آزمائش رہے گی. تو اس آزمائش کو کیسے حل کرنا ہے یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. جیسے میروز بھائی ایک بندہ نکلتا ہے
جی
11 بجے, فل گرمی کا ٹائم ہوتا ہے, گاڑی میں ایسے چلاؤ تب بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے گرمی ہے,
ٹھیک.
صبح آپ نکلیں یہ جو تکلیف ہے وہ نہیں ہے, ٹریفک نکلنے کے اوقات اس کو مینج کیا جا سکتا ہے کہ بھی آپ نے اتنے بجے نہیں اتنے بجے گھر سے نکلنا ہے. تو یوں مختلف اعتبار سے آپ اپنی پلاننگ میں روزے کو فوکیت دیں گے. 3 چیزیں بڑی ہیں میں دیکھیں, ایک تو ہے آرام.
سر لائف میں یا رمضان میں؟
مطلب رمضان میں,
ٹھیک,
کیونکہ روٹین بدل جاتی ہے نا.
ٹھیک ہے, روٹین
شہری میں اٹھ رہے ہیں آپ, جس کا وقت ہے تو آپ آرام کب کریں گے, رات کو کریں گے یا 2 حصوں میں کریں گے, کچھ رات میں کچھ فجر کے بعد یا ٹوٹل فجر کے بعد. ایک آرام ہے, دوسرا روزہ ہے, تیسرا تراوی ہے. ان 3 چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا ہے, اور روزانہ کی جو روٹین ہے وہ بھی چلنی ہے. یہ تو 3 چیزیں وہ ہیں نا کہ جو اس کے علاوہ نہیں ہے, مطلب یہاں روٹین بدل گئی ہے, یہاں جو ہے اپنا تراوی کی ذمہ داری ہے, روزہ رکھنا ہے. مطلب رمضان کا پہلا دن آتے ہی فضا ہی چینج ہو جاتی ہے.
جی مصعب, انوائرمنٹ تو بالکل چینج ہوتی ہے.
دیکھ روحانی طور پر بھی چینج ہو جاتی ہے, معمولات دیکھیں نا
جی,
مطلب ایک احساس شکر پیدا ہوتا ہے دل میں کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, چاروں طرف روزے کی بہاریں ہیں,
یہ ہم آگیمی ہو جاتی ہے,
شہری میں مسجدیں جو ہے وہ بھر گئی ہیں, और लोगों की वो लोग जो 9 बजे निकलते थे ऑफिस के लिए वो 7 बजे पहुंचते हैं,
जी
रूटीन ही चेंज हो गई है जनाब,
जी ऐसे ही
सड़कें सजी हुई हैं इफ्तारियों के लिए। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क में रहते हैं, ये हसीन नज़ारे हमें देखने को नसीब में आते हैं, अल्लाह का इस पर शुक्र है।
मुझसे आपने जो गुफ्तगू फरमाया उसमें एक बात ये इरशाद फरमाई कि अपनी रूटीन को मैनेज कीजिए, और आपने ये भी इरशाद फरमाया कि कुछ वक्त कम हो जाता है इधारों वगैरह में, लेकिन एक इसके अपोजिट सूरत हाल भी है कि बास कारोबार की नोयतें ऐसी हैं कि उनकी उनके जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, ज्यादा इजाफी वक्त उन्हें देना पड़ता है रमजान अल मुबारक में, काम की नोयत ऐसी होती है, वो कैसे मैनेज करें?
देखिए, रात को शिफ्ट किया जा सकता है, या देखिए असल जो दिक्कत होती है ना, जब आपकी कैलोरीज बर्न हो चुकी होती हैं
ठीक है,
और जब शुगर लेवल कम होने लगता है, तो यानी रोजे के करीब का जो वक्त है वो ज्यादा मुश्किल होता है,
जी
उस वक्त काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो यूं अगर आप रात को शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि रात में काम करें,
ठीक है, तरावी से
जैसे
फजर तक का वक्त
दर्जी आपने देखा होगा बहुत सुकून से रात में काम कर रहे होते हैं,
जी
दिन में लोड शेडिंग भी होती है, रात में लोड शेडिंग कम होती है, तो यूं वो अपने आप को मैनेज करते हैं।
ठीक, और मुझसे ये जो एम्प्लॉयज हैं यानी जो ऑनर हैं जो सेठ साहिबान हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ क्या खैरख्वाही कर सकते हैं?
देखिए, उनके साथ कई तरह की खैरख्वाही करनी है,
जी
रोजा रखने में उन्हें दिक्कत ना हो, काम की नोयत है वो कम कर लें, मुमकिन है बाद जगहों पे भट्टी का काम हो, आग का काम हो, तो वहां भी जो है वो जो मजदूर है उसको आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, वहां कुछ रियायत दी जाए, कुछ सहूलत पैदा की जाए, एक तो ये जिम्मेदारी है। फिर फैक्ट्री के अंदर गरीब लोग भी होंगे, मुझे 2 दिन पहले एक फैक्ट्री ऑनर का फोन आया, बड़ा अच्छा उनका अंदाज लगा मुझे, कहने लगे कि हम 2 पैकेज बनाते हैं राशन के,
ठीक,
एक जक़ात मद के बनाते हैं और एक नियाज मद के बनाते हैं।
ठीक,
तो जो मुस्तहिक ज़कात होते हैं हम उनको ज़कात मद से देते हैं, मुस्तहिक ज़कात नहीं होते उनको हम नियाज की मद से देते हैं।
वाह,
एक अच्छा अंदाजा लगा मुझे।
जी,
तो मैंने कहा फिर कैसे पता चलता है? कहते हैं हम एक बात डाल देते हैं कि भाई जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो यहाँ से ले लें, बाकी यहाँ से ले लें।
ठीक,
तो यूं मतलब एक ख्याल रखा उन्होंने अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं कि ईद आ रही है, मतलब इनके घर में भी अच्छा खाना बने और राशन इनको मुहैया हो, बाद वो कपड़े भी दिलवा देते हैं अपने लेबर्स को। तो ये एक, क्योंकि रमजान एक गम गुसारी का महीना है और इसमें हम एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, तो ये जो अंदाज है इसकी भी अदायगी करनी है।
रोजे में जो सेठ साहिबान हैं यानी किसी भी एतबार से ऊपर वाले हैं तो वो तो गुस्से का भी इजहार कर लेते हैं, कुछ जता भी देते हैं कि जी रोजा है, लेकिन जो मातहत अफराद होते हैं किसी भी एतबार से जो छोटा तबका या कमजोर तबका है वो तो ये जता नहीं पाता, तो उसका एहसास आपने बयान तो किया है, कैसे किया जाए? ये खुद फीलिंग कैसे आए कि यार ये बोल नहीं सकते, ये इनका लिहाज हमी को करना पड़ेगा?
मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कमाल, मुख्तलिफ हुनर, मुख्तलिफ औसाफ दिए।
बिल्कुल ऐसे,
जो गरीब आदमी है ना, अल्लाह ताला ने उसमें बड़े कमाल पैदा किए,
गरीब आदमी
बहुत कमाल पैदा किए।
वो क्या?
उसमें सब्र होता है, उसमें किफायत शारी होती है, कमी पर गुजारा होता है, उसने तो ख्वाब भी नहीं देखा होता कि मैं कार में बैठूंगा, ख्वाब भी नहीं देखा होता, उसकी जिंदगी में दूर दराज में नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है तो पहली दफा कार में बैठते हैं, नहीं, उनकी जिंदगी में किफायत शारी होती है, एक महदूद सर्कल में रहकर खुश होते हैं, इत्मीनान होता है उनके दिलों के अंदर, रात को जब सोते हैं तो बेफिक्र होकर सोते हैं। क्या ये नेमतें कम नहीं है?
बिल्कुल, बहुत बड़ी नेमत है।
कहने का मकसद ये है कि बात चीजें वो होती हैं कि हम अमीर होने की हैसियत से देखेंगे तो हमें कुछ और नजर आएगा, उनके दुनिया में क्या है, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है।
ठीक है, बिल्कुल,
तो ये तबीयतों का तब्दील होना, ये लोगों की हैसियतों का तब्दील होना, जब ये अल्लाह ताला ने बनाया है तो अल्लाह ताला ने जैसी जिस हैसियत में उनको पैदा किया उसके एतबार से उन्हें सब्र भी दिया है और उसके मुताबिक उन्हें जहन भी दिया है। आपको एक मिसाल देता हूं मैं कि एक जानवर जो है वो होता है बर्फानी एरिया में,
जी
बर्फानी एरिया में बाज बकरे भी होते हैं,
बीच
और
होते
रिछ
हैं।
होते हैं, उस तक और बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी खाल, उनके खाल पर बाल, उसकी नुहियत ही कुछ और होती है,
जी बिल्कुल, और वो
क्योंकि
सख्त मौसम को
उनको
वो
ठंड को फेस करना है, ठंड को फेस करना है, सर्द मौसम को फेस करना है, तो उसका मुकाबला करने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद है।
बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है, ऊंट जो है वो रेगिस्तान में होता है, जहां दूर दूर तक चारा नहीं मिलता कई कई दिन तक, तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रिजर्व जो है ना वो पूल रखा हुआ है, कि ये जब गिजा खाता है तो उस रिजर्व पूल में जमा हो जाता है जाकर, और ये अपने जो है वो जब मौका आता है उस खर्च करने का, वहां से लेके खर्च कर रहा होता है। इसके पांव जो हैं, इसके जो पंजे हैं, वो इंतहाई नरम बनाए गए हैं कि रेगिस्तान में चलने के लायक हो सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों के अंदर भी तकसीम पैदा की है कि जिस तरह का माहौल है उसके मुताबिक उन्हें सलाहियतें और उन्हें जो है कमाल अता किए हैं। तो इंसानों के अंदर भी यही मामला है कि अगर कोई गरीब है तो अल्लाह ताला ने उसे सब्र भी आला दर्जे का दिया है। असल चीज ये है कि अज़ियत और ज़रर, ये एक अलग टॉपिक है। अब एक आदमी गरीब है, हम ये नहीं कहेंगे कि जी गरीब है तो चलो इस हैसियत में रहना अच्छी बात है। अगर उसको किसी मौके पर अज़ियत और ज़रर पहुंचता है, जैसे उसके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, तकलीफ में है,
जी
उसका घर गिर गया है,
सही
या जो उसे मिलता है गुजारा ही नहीं हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये है अज़ियत और तकलीफ। तो अज़ियत और तकलीफ तो जानवरों को नहीं पहुंचानी।
ठीक
आपने वो वाक्य सुना होगा कि एक औरत ने जो है वो बिल्ली को प्यासा रखा,
जी
उसकी वजह से वो जन्म में गई। तो अज़ियत और तकलीफ ना जानवर को देनी है, और जानवर को हमने नहीं दी वैसे तकलीफ में है, उसको भी उस तकलीफ से निकालना है। तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूकात है।
सही
तो अगर कोई मुसलमान किसी तकलीफ में है, अजियत में है, तो बहरहाल उसे उस तकलीफ से निकालना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है।
चलें जी, कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली कॉल शामिल सिलसिला कर रहे हैं जी।
मुफ्ती साहब से अहकाम तिजारत सिलसिले में मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स बिजनेस कर रहा हो और उसमें किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किसी को पार्टनर बनाया जाए, फॉर एग्जांपल उसने 50 लाख की कोई सामान की सप्लाई देनी है और उसके पास इतनी अमाउंट मौजूद नहीं है, तो उधार लेके तो जाहिर है उस पे वो नफा दूसरे को नहीं दे सकता कि वो सूद ना बन जाए, और बगैर नफे के उमूमन कर्ज भी लोग नहीं देते, तो क्या वो ये कर सकता है कि स्पेसिफिक उस सप्लाई के लिए किसी को पार्टनर बना ले? फॉर एग्जांपल वो ये उससे मुआहदा करे कि मेरा जो ये अभी सप्लाई है इसमें, फॉर एग्जांपल मुझे ये 50 लाख का सप्लाई है और इसमें मुझे एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, और इस 20 लाख में से तुम 50 लाख मुझे दो तो 60% तुम्हें दे दूंगा और 40% मैं रख लूंगा। अप्रोक्सीमेट उसको बता दे कि तकरीबन इतना प्रॉफिट आपको आ जाएगा, बाकी जो एग्जैक्ट होगा उसी के मुताबिक ही कैलकुलेशन की जाएगी। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? अगर इसमें ये जायज़ नहीं है तो इसकी क्या जायज़ सूरत बन सकती है?
दो मोड हो सकते थे। एक तो ये हो सकता था कि उनकी रकम शामिल हो, तब भी ये काम आगे चल सकता है, और दूसरा ये कि उनकी रकम शामिल नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है
तो ये इन्वेस्टर ने पैसे दिए, कैपिटल दिया अपना रासल माल के तौर पर, ये मुदारबत है, एक की मेहनत है, एक का पैसा है, एक डील है। तो इन्होंने उनका पैसा लेकर काम शुरू किया, उस डील की बुक अलग करेंगे, यानी हिसाब किताब अलग रखेंगे, और नफे का रेशो कम ज्यादा रखते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है, बाकी जो मसाइल हैं वो मुदारबत के मुताबिक नतज निकाले जाएंगे। होता ना कि भाई लॉस आ जाएगा तो क्या होगा, मुदारबत के अलग कवानीन है, शिरकत के अलग कवानीन है।
ठीक।
शरी तरीके पर रहकर मुमकिन है यहाँ पर नफे की डिस्ट्रीब्यूशन और नफा तकसीम करना, और जो आपके जहन में ख्याल आया वो बिल्कुल दुरुस्त है।
अगली कॉल दीजिए।
मोहम्मद दानिश अतारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइएगा, कोई शख्स ऐसा है जिस पर जकात का निसाब टूट गया है, ऐसा वक्त आ गया कि पूरा साल उस पर जकात फर्ज रही नहीं, लेकिन अब उसने बीसी डाली और पहली ही बीसी उसको मिल गई, अब वो उसकी अमाउंट अच्छी खासी बन गई है, पहली बीसी उसको मिल गई है, अब लेकिन उसने सारी बीसियां उसने हर महीने अदा तो करनी है, तो एक कर्जे की सूरत भी आ जाएगी, लेकिन माल भी इसके पास आ गया, तो क्या ये साहिब निसाब कहलाएगा इस दिन जिस दिन माल इसके पास आ गया?
देखिए, माल इसके पास आना और है और इसका अपना माल होना और है। जो माल इसके पास आया है, जितनी किस्तें इसने जमा करवाई थी, आप कह रहे हैं एक ही किस्त जमा कराई है,
पहली मिली है तो वो भी नहीं जमा करेगा सर, पहली मिली है ना,
मतलब
कमेटी का जो रूल है
पहली का वो तो होगा ना, अच्छा वो जमा नहीं होती,
वो आनी ही मेरी बीसी है।
अच्छा,
यानी मुझे मिलनी है तो मैं दूंगा थोड़ी रकम, अभी तो मैं लेने वाला ही हूँ।
अक्सर औकात तो ये होता है कि जो जमा कर रहा होता है उसी को पहले मिलती है
जी,
लेकिन कोई और हो तो जमा तो हो सकता करवाई हो, तो कहने का मकसद ये है कि ये रकम आपकी नहीं है, अगर आपने पहले किस्त जमा कराई है वो आपकी हो सकती थी, बाकी रकम तो कर्जा है काबिले वापसी है। तो निसाब का जब आप हिसाब लगाएंगे तो इस रकम को शामिल नहीं करेंगे कि जो काबिले वापसी है पेबल है।
ठीक
जी,
अगली कॉल दीजिए।
मेरा ये सवाल है कि जब भी हम कैश वाली दुकान पर जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो अगर हम 1,000 रुपया निकलवाते हैं तो वो हमसे एक्स्ट्रा 20 रुपए लेते हैं, या फिर हम बिल बिजली का जमा करवाते हैं तो वो हमसे 10 या 15 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये कैसा है लेना या देना?
देखिए, एक सूरत तो ये बनती है कि मनी ऑर्डर का मामला हो सकता है कि मनी ऑर्डर जब भेजते हैं हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र करने वाला जो इदारा है अपनी खिदमात के बस पैसे वसूल करता है
सर्विस चार्जेस के नाम पर।
एक सूरत ये हो सकती है, अगर यही सूरत है तो जायज़ है।
ठीक, ये पिछला सवाल जो आया इसमें ये भी था कि ज़कात का जो साल था निसाब का वो टूट गया है और एक साल तक ज़कात फ़र्ज नहीं रही, ये कहा था इन्होंने, तो अगर एक साल तक फर्ज नहीं रही वो निसाब का जो तारीख थी वो चली गई और अब आया है, तो अब फौरी तौर पे ज़कात फर्ज होगी या बाद में होगी?
ये अलग सवाल है आपका
जी।
देखिए, निसाब का साल टूट गया, फिर पैसे आए, पैसे निसाब के बराबर आए या जो भी चीज़ है जो जिन पर ज़कात फर्ज है उसके एतबार से साहिब निसाब बना
जी,
पूरा साल पहले गुजर चुका था।
ठीक,
अब दोबारा से तारीख कंटिन्यू होगी।
ठीक है, वो पिछले वाला रिकॉर्ड जो है वो नहीं बनेगा,
वो अब चला गया, आप दोबारा से इसी तारीख को अगले साल इस्लामी हिसाब से जब आएगा
जी,
उस दिन इसके पास क्या है उस दिन के हिसाब से ज़कात निकालना होगी।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कुछ लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं जो करोड़ों में होती हैं और उनके किराए वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो किराए पे जो प्रॉपर्टियां दी हुई हैं बहुत सारी, उनका किराया आ रहा होता है और रोलिंग चल रही होती है घर का खराजात वगैरह सब, तो उसकी ज़कात के हवाले से क्या हुक्म होगा?
जिस प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए खरीदा गया है उस पर ज़कात फर्ज नहीं है।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, दुकानदार कई देखे हैं वो जब गाहक आता है तो अपनी चीज की कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम कुरान की कसम मुझे इतने की आई है, जब गाहक जाने लगा है अगर वो 100 रुपए की कहता आई है तो 90 रुपए की चीज दे देता है, ऐसा करना और कसम खाकर सौदा बेचना क्या इसमें बरकत होगी? शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
देखिए, दो तरह की कसम होती है, एक तो बाज लोग सच्ची बात पर कसम खाते हैं वो भी मायूब है, कि कोई ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, सिर्फ सौदा बेचने के लिए ग्राहक के सामने सच्चा बनने के लिए कसम खाने का क्या फ़ायदा, तो बरकत नहीं रहती उससे भी। और एक है झूठी कसम उठाना, यानी खिलाफ़े वाका बात करना और अल्लाह का वास्ता उस पर लेकर आना, अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करना, कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है, तो और बदबख्ती की अलामत है ये, तो बड़ा गुनाह है, इस गुनाह से तौबा करना ज़रूरी है।
मतलब इस सवाल से रिलेटेड जब बात होती है तो बाज़ वक़्त मार्केट से सवाल आता है कि जनाब ये तो ठीक है आप जो जवाब दे रहे हैं या जो बता रहे हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह रसूल की बात है, दीन की बात है, लेकिन अगर मार्केट प्रैक्टिस देखी जाए तो मार्केट में जो जितना इस किस्म के मामलात में मुलव्विस होता है, कसमें खा रहा है, घर में इतने की पड़ी है, उधर इतने की पड़ी है, कहीं मिलेगी नहीं, जिस रेट पर मैं दे रहा हूँ ये, यानी वो एक जो बाजारी अंदाज होता है उसको इख्तियार करता है, तो उसकी सेल भी ज्यादा होती है, उसकी इनकम भी ज्यादा होती है, उसका कारोबार भी फैल रहा होता है, कस्टमर भी उसके पास आ रहे होते हैं, और जो सीधी खरी सच्ची बात कर रहा होता है तो उसके पास बाज़ औक़ात इसके बरक्स मामला होता है।
देखिए, रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, गाहक को हम घर से नहीं लेकर आ रहे होते
है, तो ऐसे
गाहक चल के हमारे दुकान में आ रहा होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको घर बैठे रिस्क अता फरमा रहा है, आपने कैसे रब्ता फिट कर लिया, ये कुलिया कैसे आपने बना लिया कि मैं गलत काम करूंगा जब ही अल्लाह ताला मुझे रोजी देगा, ये आपका वसवसा है, वहम है और गलत फहमी है कि आप जो है, यानी इंसान जब गुमराही की तरफ बढ़ता है ना
जी,
गलती की तरफ बढ़ता है, तो अपने जहनो दिमाग में फासिद दलाइल कायम करता है, क्योंकि जमीर कह रहा होता है कि नहीं ये गलती है, नहीं जाना,
ठीक है,
लेकिन वो अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए एक फासिद बुनियाद रखता है। तो ये जो फासिद बुनियाद है ना, सूफिया जो है, जो किताबें लिखते हैं, दिलों को खंगालने वाली चीजें होती हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर चोर है, मतलब वो एक आलिम को बताते हैं तुम्हारे दिल के अंदर कैसे कैसे चोर आता है
जी,
वो एक आबिद और जाहिद को बताते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर चोर किस अंदाज में आकर तुम्हें बहकाता है, तो वो एक लेन देन करने वाले को भी समझाते हैं कि दिल का चोर किस किस अंदाज में आता है। तो दिल का जो चोर है इसको समझना जरूरी है कि जिसने अपने नफ्स को जान लिया उसने रब को पहचान लिया। रब तक पहुंचने के लिए जो रुकावट होती है अपना आप ना पहचानना रुकावट होती है।
ठीक,
हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं
जी,
किसी ऐसी गलती के मुर्तकिब हैं, हम बड़े मुतमईन हैं, हम समझते हैं हाजी नमाजी सबसे ज्यादा रहम दिल, सबसे ज्यादा सबका खराब करने वाले, लेकिन पता चले कि हम तो फुला 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 गलत काम कर रहे हैं। इसी तरीके से दिल को बनाने के लिए ये दलाइल हो सकते हैं, लेकिन झूठ झूठ होता है, दगाबाजी दगाबाजी होती है, धोखा धोखा होता है, और ये सब वो बातें हैं जो आपको पूरी मार्केट जानती है, फिर धोखेबाज है, छोटी कसम खाता है, ये ग्राहकों से यूं लूटता है, तो लेकिन आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इस फरेब से बाहर निकलिए, ये फरेब है, ये एक शराब है जो आपको जो ना वो पानी की तरह नजर आ रही है जी।
मुझसे एक सवाल है हमारे पास कि एक मस्जिद की रकम, एक मस्जिद के चंदे की जो रकम है वो दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल की जा सकती है, इसकी कोई सूरत बन
नहीं की जा सकती?
ठीक,
सूरत बनने को तो देखें नादिर सूरतें हो सकती हैं कि भाई मस्जिद माजल्ला सुमा माजल्ला शहीद हो गई, पैसा क्या करें कैसे करें पता नहीं चल रहा, तो वरना तो मम्मी रात में तो मस्जिद प्रॉपर्टी है वो।
ठीक मुफ्ती, क्योंकि ज़कात निकल रही है इस वक्त, मुसलमानों की एक तादाद होती है जो इन महीनों में इन अय्याम में ज़कात निकाल रही होती है, मैं एक मसला पूछना चाहूँगा आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें भी गफलत है कि बहुत सारे इदारे, इवन बाज़ मसाजिद में भी ऐसा देखा है कि वो ज़कात के लिए भी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि ज़कात दे दें, तो इन इदारों में या मसाजिद में ज़कात लेते हुए या देते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए?
देखिए पहली बात तो ये है कि मस्जिद पर ज़कात नहीं लगती।
ठीक है,
ठीक है, मतलब ज़कात के लिए तमलीक जरूरी है, तमलीक शरी फकीर को मालिक बनाना जरूरी है, फर्ज पर ज़कात लगती है जबकि वो शरायत पाई जाती है।
सही।
दूसरी बात यह है कि जैसे मदारिस हैं, मदारिस में ज़कात दो तरह से खर्च होती है
जी,
बाज ऐसे भी इदारे हैं कि जो तलबा के वकील बन के ज़कात लेते हैं।
ठीक है,
तलबा की मिल्कियत में चली जाती है, वो फिर मदरसे के लिए डोनेट कर देते हैं। बाज इदारे ये कहते हैं लोगों से कि हम आपके वकील बनेंगे, मतलब जो इदारे मांग रहे होते हैं आमतौर पर
जी,
तो वो लोगों के वकील होते हैं, वो फिर शरीफ फकीर तक पहुँचा के तो उससे इजाज़त लेके ज़रूरी कामों में खर्च करते हैं। ज़कात है इंतहाई ज़रूरी कामों में खर्च करने के लिए।
ठीक,
यानी शरीयत ने जो मयार मुकर्रर किया है इसका कि भी गुर्बत की इस लकीर से नीचे लोग जो लोग होंगे
जी,
उनको ज़कात देनी है।
सही,
ताकि ये ज़्यादा मोहताज हैं, ज़्यादा हाजतमंद हैं, इन तक ज़कात पहुँचे।
ठीक,
दूसरी चीज़ यह है कि मफाद अम्मा के काम, पुराने वक्तों में लिखा है फुका ने नहर बन रही है या पुल बन रहा है, तो उसके लिए ज़कात यूं शरीफ फकीर को मालिक बनाने के बाद सर्फ हो सकती है।
ठीक,
मस्जिद जो है अगरचे के मफाद अम्मा इससे वाबस्ता हैं, लेकिन मस्जिद अहले मोहल्ला का हक है, इन्होंने उससे फ़ायदा उठाना है।
सही,
ज़कात ऐसी जगह दें जहाँ से रिटर्न हो नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
सही,
तो अहले मोहल्ला का हक है, अपने पाक माल से बनवाएं और मस्जिद को खड़ा करें और उसके मुताबिक उसको खर्च करें। بہت سارے ادارے زکوٰۃ کو نمود و نمائش پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے کاموں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں لیں گے اور جناب محراب بنا رہے ہیں، جناب سنگ مرمر لگانی ہے زکوٰۃ کے پیسے، ارے جناب زکوٰۃ کے پیسے سنگ مرمر تو انتہائی ضروری کاموں میں لگتی ہے،
ٹھیک؟
تو زکوٰۃ انتہائی ضروری کاموں میں اگر ہلا کر کے بھی لگتی ہے، ایسے مواقع ہیں تو وہاں لگائی جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ شجر کاری ہو رہی ہے،
جی
کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کریں؟ آپ
پودے لگانے میں
کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ثانوی سال تیسرے درجے کی چوتھے درجے کی ضرورت ہے، اولین درجے کی ضرورت تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ہلا کر کے بھی نہیں رکھ سکتی،
صحیح،
بلکہ پاک پیسے صرف کیے جائیں گے،
صحیح،
ایسا تھوڑی ہے کہ ایک پودا ہزاروں روپے کا آتا ہے، ہر ایک بندہ جو نا 100-200 روپے خرچ کرے تو بآسانی مینج ہو سکتا ہے،
ٹھیک،
تو یہ صورتحال ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی ساری باتیں چلی ہیں تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی بہت سارے شعبہ جات میں بہت سارے کام کر رہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دارالفتاء اہل سنت مفتیان کرام کی رہنمائی سے بہت احتیاط کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنا تعاون فرمائیے، اپنی زکوٰۃ فطرہ اور دیگر صدقات خیرات۔
اب دعوت اسلامی کا میں ایک جھلک عرض کروں،
جی
زکوٰۃ تو دور کی بات ہے،
جی
دارالمدینہ قائم ہوئے،
جی
اور دارالمدینہ قائم ہونے کے بعد فیس نہیں لیں گے ہم،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک آواز آئی،
جی
اس کے بعد کہاں سے چلیں گے جناب؟ وہ
جی
دارالفتاء اہل سنت نے کہا کہ جی آپ جو دعوت اسلامی کا چندہ ہے نا، چندہ،
جی
وہ بھی وہاں نہیں لگا سکتے،
دعوت اسلامی ہی کا ادارہ ہے حالانکہ، لیکن نہیں لگا سکتے،
وجہ اس کی ہے کہ یہ تو آپ نے لیا ہے دینی کاموں کے لیے،
ٹھیک ہے،
چندہ،
ٹھیک
ہے، امانت ہے آپ کے پاس،
ٹھیک ہے،
یہ دینی کام نہیں ہے، یہ دنیاوی کام ہے،
ٹھیک ہے،
زکوٰۃ تو دور کی بات ہے،
عام چندہ جو ہے وہ دعوت اسلامی،
خالوں کی رقم تو دور کی بات ہے،
جی
خالوں کی رقم بھی نہیں، عام نفلی چندہ بھی نہیں، لا محالہ دو صورتیں تھیں، یا تو ادارے بند کر دیے جاتے،
جی
انہوں نے وقتی طور پر کام چلانے کے لیے قرض لیا،
ٹھیک ہے،
اور پھر مشکل فیصلہ کیا کہ ہم فیس پر جائیں گے،
صحیح،
انہیں فیس پر جانا پڑا، دعوت اسلامی کا ڈونیشن وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، اب آ کے کچھ الفاظ بھی چینج کیے ہیں کہ مدینہ تو اب بھی نہیں لیتا فنڈ، کہ بھائی یعنی دنیا کے شعبے بھی کھولے ہیں، ایف سی آر ایف بھی کھولا ہے، کوئی کھانا کھلانا دینی کام نہیں ہے نا، کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک وہ ہے خیر خواہی ہے،
ٹھیک ہے، ضروری بنیادی دینی کام نہیں ہے،
بعض اوقات ضروری بن بھی سکتا ہے، زلزلہ آ گیا،
ٹھیک ہے،
لوگ بے حال ہیں،
جی
ابن سبیل کی طرح ہیں،
جی
تو وہاں تو ایک الگ چیز ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ادارے علماء کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہاں بہت حد تک بچت رہتی ہے، بہت حد تک کا اس لیے کہا ہے میں نے کہ آپریشنل کام کے اندر
جی
غلطی کی گنجائش ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی ایک بندہ جو ہے نا دور دراز کہیں بیٹھا ہوا ہے یا اس نے سمجھا کہ صحیح ہے اور وہ غلط تھا، گنجائش ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک مسلسل چیک اینڈ بیلنس کا نظام الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہے، تو یہ جو غلطی کی گنجائش ہے اس کے کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ذمہ داران کی طرف سے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ ادارے جو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے عطیات لے کر زکوٰۃ لے کر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں،
صرف محسوس
ہم اپنا جو نظام جو ہے نا وہ ویریفائی کروائیں علماء سے، جید مفتیان کرام سے، مالی معاملات کو سمجھنے والے علماء سے، اور نہیں کرتے لوگ۔ ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی ہم نے کسی خاص مد کے لیے فنڈ لیا ہوا تھا، وہ بچ گیا ہے، تو ہم اس سے رمضان آ رہا راشن بنا کے تقسیم کر دیں؟ میں کہا نہیں، آپ نے جس مد کے لیے چندہ لیا ہے، یعنی شریعت کے جو قوانین اور مسائل ہیں یہ رائٹس کا تحفظ کرتے ہیں، کہ اس نے تو دیا تھا اس کام کے لیے، آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں، دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے اب آپ، تو یوں مسائل میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ جو لوگ چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل بروز قیامت آپ اپنے کندھے پر بوجھ لے کر جائیں، جواب دہی کا بوجھ، غلط کاموں کا بوجھ، آپ چلے تھے آخرت صحیح کرنے کے لیے لیکن غلطیاں کرنے کے بعد اور پھنس گئے،
جی اور اپنی بھی نہ چلائیں، کال کی طرف
ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، سیٹ کلچر ہے، सिस्टम कल्चर नहीं है। होता है फैक्ट्रियों में होता है कि एक सेठ सबसे चला रहा है और एक बड़ी कंपनी होती है, अपना कॉर्पोरेट कंपनी होती है, वो सिस्टम के तहत चल रही होती है। तो कुछ इदारे ऐसे हैं से गुजरते हैं, बिरादरियों में भी ऐसा होता है कि बिरादरी में सेठ को आगे करते हैं, सेठ साहब आप ही सदर हैं हमारे, अब सेठ साहब बोलता है जो मैंने बोलना है वो सही है बस। भाई अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपके कंधे पर बोझ है, आपको जवाब देना है कयामत के दिन, इन चीजों को भी सामने रखना होगा।
तो अभी दो चार दिन पहले की बात है कि एक मस्जिद के लिए तामीरात का ऐलान हुआ तो किसी साहब ने ताबून फरमाया और जिसके जरिए से ताबून किया वो तकरीबन जो रकम लेकर आए वो खास मद की थी। और मेरी देखी भाली बात है कि जब वो रकम का आया कि भाई ये रकम ले लो तो वो कहने लगे कि ये उस मद की है। फिर बाद में उन्हें बताया गया कि उस जरूरत के लिए, यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ समझना जरा दुश्वार हो जाएगा, मैं सीधी बात कर लेता हूँ, यानी किसी ने रकम दी कि जी इससे ना मस्जिद में लाइटिंग का काम आप करा लीजिएगा, और जो
साफ रकम थी
साफ रकम थी कि मस्जिद में इसे लाइटिंग का काम करा लीजिएगा, तामीर हो रही है मस्जिद तो लाखों रुपए का काम उसमें लाइटिंग वगैरह का इलेक्ट्रिक का, तो उसके लिए रकम दी। तो उन्हें कहा गया कि भाई लाइटिंग की तो बारी बाद में आई, अभी तो सरिये की जरूरत है। तो लाने वाला जो नुमाइंदा था या वसीला बना था वो कहने लगे आप उसमें खर्च कर लें, तो फिर उनको बताएगा भाई ऐसे आपके कहने से थोड़ी होगा, उससे इजाजत लो। तो वो कहने लगे नहीं नहीं उनकी तरफ से इजाजत है। बताया उन्हें कि भाई ऐसे कैसे इजाजत हो सकती है, जब पहले ही एक मद तय करके उस फर्द ने दी है तो इजाजत कैसे हो गई। तो खैर फिर वो इजाजत ली गई। तो ऐसे भी हो जाता है कि बीच के जो अफराद होते हैं वो बाजू का यूं कर रहे हो,
ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो।
तो हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, देखते रहिए मदनी चैनल, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अहकाम तिजारत अहकाम।